மங்களம். கேவலி பண்ணத்தோதம் மங்களம். சத்தாரி கேவலி பண்ணத்தோதம் சத்தாரி சரணம் பவ்வச்சாமி அர்ஹந்த சரணம் பவ்வச்சாமி சித்த சரணம் பவ்வச்சாமி. சாஹு சரணம் பவ்வச்சாமி. கேவலி பண்ணத்தோ நம்மோ சரணம் பவ்வச்சாமி.
பரம் பூஜனீய தேவாதி தேவன் ஸ்ரீ ஆதிநாத் பகவான் உத்தம தியாக பரம ஆச்சாரிய ஸ்ரீ குருவர் வித்யாசாகர் आठवें धर्म में त्याग शब्द का अर्थ क्या लेना ये विचारने की बात है, क्योंकि त्याग नमक का भी होता है, घी का भी होता है, छह रसों का हो सकता है, क्या भोजन की अन्य किसी सामग्री का हो सकता है, कुछ अन्य वस्तुओं का भी हो सकता है, और दान के रूप में भी अपने द्रव्य का त्याग हो सकता है। तो उत्तम त्याग धर्म में साधु जो त्याग करते हैं, क्योंकि ये उत्तम त्याग की बात है, दस धर्म जो है वो साधुओं के हैं, वो साधु क्या त्याग करते होंगे उत्तम त्याग में, जो रस परित्याग आदि करते हैं वो, या और कोई उससे हटकर ये कोई अलग वस्तु, कभी आपने विचार किया इसके ऊपर कि साधु का उत्तम त्याग कैसा है, क्या है? उन्होंने जो परिग्रह का त्याग किया वो तो अपरिग्रह महाव्रत हो गया। फिर ये त्याग धर्म क्या वस्तु साधु के जीवन में, तो इसकी जानकारी के लिए तत्वार्थ परंपरा के जो भी ग्रंथ हैं उनमें सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की बहुत प्राचीन टीका है, 1500 वर्ष पुरानी टीका है, संस्कृत भाषा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी। उसमें आचार्य श्री कहते हैं कि संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग। साधु का जो त्याग धर्म वो ये है कि साधु जो कुछ दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं साधु? पैसों का दान तो दे नहीं सकते साधु, तो उसमें बताया ज्ञानादि दानम, ज्ञान आदि का जो दान होता है साधु द्वारा किया जाने वाला, वो त्याग धर्म है। अब ज्ञान तो ठीक है, पर आदि में क्या क्या लेंगे आप साधु, और क्या दे सकते हैं ज्ञान के अलावा? सोचो उत्तर है इसके, एकदम सरल प्रश्न है। क्या आशीर्वाद कह सकते हैं? वास बढ़िया होता है। और प्रवचन में तो ज्ञान वाली बात आ जाती है। व्रत ले सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल ठीक। दीक्षा ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ज्ञान आदि साधु जो कुछ भी दे सकते हैं वो यदि देते हैं, आशीर्वाद है, दीक्षा है, प्रायश्चित है, ज्ञान है, उपदेश है, ये सब साधु का त्याग धर्म है, उत्तम त्याग। और कभी कोई ऐसा सोचे कि इसमें क्या त्याग है, यानी इस प्रश्न को थोड़ा शांत करके आप अपने मन से अपने हृदय से पूछना कि साधु जो कुछ दे रहे हैं वो उसका मूल्य कितना हो सकता है। तो आपको शांतिपूर्वक विवेक से विचार करने का समझ में आएगा कि जो दान साधु देते हैं वो दान संसार में अनमोल है, कोई दूसरा वो दान दे ही नहीं सकता जो साधु देते हैं। लेने वाले की पात्रता पर भी निर्भर करता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैना सुंदरी दुखी होकर के गुरु के पास गई और उसने गुरु की वंदना की और चुपचाप बैठे रहे उनके चरणों की ओर देख करके, तो उस समय गुरु समझ गए कि इसको कोई वेदना है, कोई पीड़ा है। पूछते हैं कि बेटी तुम्हें क्या तकलीफ है, तो फिर वैसे गुरु की तरफ देखती, हाथ जोड़ती और कहती है कि लाख उपचार करने पर भी, अनेक प्रयास करने पर भी मेरे स्वामी की कुष्ठ व्याधि दूर नहीं हो रही, यही मेरा कष्ट है। क्या मेरे स्वामी का कोर ला इलाज है? तब महाराज कहते हैं कि नहीं, उसका उपचार हो सकता है पर अभी तक तुमने वो विधि की नहीं है, इसलिए वो ठीक नहीं हुआ। कृपा करके हे गुरुवर बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव कहते हैं सिद्ध चक्र की आराधना करो। सिद्ध चक्र, चक्र का अर्थ क्या है? एक तो वो चक्र होता है जो युद्ध में काम आता है, वो वाला चक्र तो सिद्ध चक्र नहीं है। सिद्ध चक्र का अर्थ होता है सिद्ध समूह, सिद्ध भगवंत का समूह जो है उसको सिद्ध चक्र कहते हैं। तो सिद्ध चक्र की विधि करो। तो विधि का उपदेश दिया गुरु महाराज ने और फिर मैंने सुंदरी को एक मंत्र भी दिया। वो मंत्र है छोटा सा पर सिद्ध चक्र का मंत्र होने के कारण उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। भले अक्षर अल्प हो लेकिन शक्ति बहुत विशाल है। और गुरु के दिए हुए मंत्र को यदि कोई ग्राहक जिसको गुरु ने दिया है वो मंत्र, वो यदि उस मंत्र को अपने मित्रों के लिए या फिर अपने और परिचितों के लिए बताने लग जाए तो उस मंत्र की शक्ति उतने टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। क्योंकि जब तक वो उस विधि को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उस मंत्र शब्द अपने आप में कहता है कि वो मन तक रखने का है, उसको गोपनीय रखा जाता है मंत्र। षट कर्णो विद्यते मंत्रश, चतुष्कर्णस्तु जातुचित, द्विकर्ण गतो मंत्रो ब्रह्मणान्नैव पार्यते। एक श्लोक आता है कि गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया वो मंत्र अगर 6 कानों तक चला जाए तो उसकी पूरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर 4 कानों तक चला जाए तो कुछ समय बाद उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तत्काल नहीं होगी। और अगर वो 2 ही कानों में रहे, माने जिस शिष्य को मिला है मंत्र तो उस तक सीमित रहे, तो उसकी शक्ति को भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते, गुरु के मंत्र की शक्ति। इसलिए गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को हमेशा अपने तक सीमित रखना शिष्य का या भक्त का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो दान जो है जिसको दिया गया है उसके लिए, वो बांटने के लिए या फिर यश कीर्ति के लिए या फिर अपनी जानकारी दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए नहीं है, वो अपने हित के लिए है, अपनी किसी पीड़ा का निवारण करने के लिए, अपने हित के लिए। तो गुरु महाराज क्या क्या देते हैं, साधु क्या क्या देते हैं, तो ज्ञान आदि शब्द में देखो, पहले तो ज्ञान हो गया, ये तो सबको सरलता से समझ में आ जाता है कि गुरु ज्ञान देते हैं, और ज्ञान के अलावा दीक्षा देते हैं। कभी त्रुटि हो जाती है तो फिर उसका प्रायश्चित भी देते हैं, व्रत देते हैं, नियम देते हैं, और कभी मंत्र भी देते हैं। अभी कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि मंत्र तंत्र करने वाले साधु समाज को गुमराह करते हैं और मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं, पर ऐसा दुराग्रह उचित नहीं है। साधु जब निस्वार्थ भाव से किसी के कल्याण के लिए, हित के लिए कुछ देते हैं तो उसमें साधु को कोई दोष नहीं लगता। यदि वो उपजीविका के लिए ऐसा करते हैं, यानी अपनी मान बढ़ाई के लिए या फिर अच्छा आहार मुझे श्रावक लोग तब देंगे जब मैं उनको कुछ ऐसी मजेदार चीज दे दूंगा, ऐसे कोई इरादे के साथ कुछ देते हैं तब साधु को दोष लगता है। अब मैंने सुंदरी को साधु नहीं तो मंत्र दिया था, तो वो साधु दूषित थे क्या? कैसे हो सकते हैं दूषित? इसी प्रकार अन्य भी ऐसे कई दृष्टांत आपको मिलेंगे प्रथमा योग में कि गुरुओं ने संकट की स्थिति में भक्तों के लिए कुछ न कुछ विधि बताई है, या फिर कोई मंत्र या कोई न कोई मार्ग दर्शन प्रदान किए। तो ये भी उत्तम त्याग धर्म है। एक दिन की घटना आपको सुनाते हैं, याद है आज से 20 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गोटे गांव नाम का स्थान है। इस सभा में संभव है किसी ने ये शब्द कानों में सुना है, सुभूषण माता जी अभी गोटे गांव की अनेकांत स्वागत महाराज, ये दीक्षा पूर्व उसी स्थान से संबंध रखने वाले रहे। तो गोटे गांव में बड़ा पंच कल्याण महोत्सव हो रहा था, तो उस समय गर्भ कल्याण के दिन मंगलाचरण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, और रविंद्र जैन संगीतकार भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे, आचार्य श्री का पूरा संघ वहां पर विराजमान था। और 10 फरवरी को एक हाथी विक्षिप्त हो गया, उसने रात को महावत की हत्या कर दी। फिर कलेक्टर के आदेश से उस हाथी को भी जहरीली गोलियों के वार से नष्ट करना पड़ा। खैर ये सब घटना दुर्घटना हुई, पर जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 5 दिन तक वो कल्याण महोत्सव चला, तब सूर्य मंत्र आदि की सारी विधियां संपन्न होने के बाद मोक्ष कल्याण का महोत्सव मनाकर जो वहां पर एक परंपरा है बुंदेलखंड में कि हाथियों का रथ निकलता है, उस पर श्री जी भगवान को विराजमान करके फिर ऐसे पूरे पंडाल की तीन फेर सात फेर लगाते हैं।
तो उतने फेरियां लगाने के बाद
फिर आचार्य श्री का अंतिम प्रवचन होता है, वहां जहां भी कार्यक्रम होते हैं गजरत के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव।
तो वो इतने फेरियों में कम से कम डेढ़ दो घंटे लग गए, और उतने समय तक एक बूढ़ी माँ वो विशाल सभा के अंदर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, उसमें मंच लगा हुआ था जहां पर आचार्य श्री का संघ फेरियों के बाद में विराजमान होने जा रहा था। तो उस समय वो जो बूढ़ी माँ थी वो उतनी भीड़ को पार करके धीरे धीरे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, अब आ रही आवाज। तो वो बूढ़ी माँ डेढ़ दो घंटे में उस भीड़ में से निकलकर थोड़ी जगह देना करते करते वो मंच के पास आ गई, और जब आचार्य श्री विराजमान हुए तो वो स्टेज पर चढ़ने लगी। तो वॉलंटियर लोगों ने, जो स्वयं सेवक लोग होते ना, उन्होंने उसको रोका कि अरे वहां कहाँ जा रही है, बैठ जाए यहाँ दादी, नीचे बैठ जा। पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी, तो फिर बाय फोर्स मतलब जबरदस्ती उसको रोका। और भाग्य संयोग की बात है कि आचार्य श्री की ऐसे नजर पड़ गई कि वो
भाग्य संयोग बोलो तो भाग्य संयोग।
तो वो डेढ़ दो घंटे पंखे बंद कर दिए, जाम चालू। ये घटना पंखे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेढ़ दो घंटे में वो बूढ़ी माँ भीड़ को ऐसे खिसका खिसका करके सामने आते आते मंच के पास पहुंच गई, और जब आचार्य श्री के पास स्टेज पर चढ़ने लगी तो उसको स्वयं से वो रोक दिया, और भाग्य संयोग से आचार्य श्री ने देख लिया। तो आचार्य श्री ने उस गरीब वृद्धा की दशा को देखकर और पता नहीं क्या सोचकर ऐसे इशारा किया, आने दो। वो आचार्य श्री के पास आई और पास आकर के उसको पता था कि इतने पांच छह दिनों में लोगों ने कितना दान किया, तो न जाने कैसे उसके मन में भी क्या भावना जागी थी कि वो आई वहां पर आचार्य श्री के पास, और आचार्य श्री के पास आकर के उसके वस्त्र कोई बहुत टिप टॉप तो थे नहीं, साधारण वस्त्र थे, पर उसने अपने हाथ में से एक चांदी की चूड़ी जो बरसों पर पुरानी रही होगी बहुत मुश्किल से ऐसे खींच करके ऐसे निकाली और ऐसे आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करके प्रणाम करके चली गई। उस घटना को देखकर बहुत से लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया, लेकिन जो समझ गए वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गया कि इस गरीब बूढ़ी माँ ने आकर के यहां पर गुरु के चरणों में। सब लोग तो अपने अपने हिसाब से दान कर रहे थे, अपनी अपनी राशियां घोषित कर रहे थे,
तो उस बूढ़ी माँ ने भी अपनी तरफ से कुछ समर्पित कर दिया और वो जो उसके कलाई पर पहनी हुई एक चांदी की चूड़ी थी वो उसने गुरु के चरणों में अर्पित कर दी। और इस बात को फिर आचार्य कृष्ण ने उल्लिखित किया, अर्थात उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि फिर तो दान अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अपन शास्त्रों में देखें तो फिर भाव संग्रह ग्रंथ में ऐसा बताया कि जो जिनेन्द्र भगवान को मानने वाले देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं वो अपनी आमदनी का छठा हिस्सा धर्म कार्य में दान देते हैं। यानी अगर कोई एक वर्ष में 6 लाख रुपया कमाता है तो 6 लाख में से 1 लाख वो धर्म के लिए दान में प्रदान कर देता है। ये जैन मार्ग है। उस बुढ़िया ने उसके पास कितनी संपत्ति थी कुछ पता नहीं, बिल्कुल गरीब, और उसको लोग स्टेज पर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी और उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो एक तो 2 घंटे में वो यहां पहुंची आचार्य श्री के पास, और फिर यहां भी उसको रोक लिया गया, लेकिन वो जिस विश्वास के साथ पहुंची थी उस विश्वास ने आचार्य श्री का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर लिया और आचार्य श्री ने रोकने वालों को रोक लिया और उसको ऊपर आने दिया। और उसके बाद जब उसने अर्पित किया तब आचार्य श्री ने कहा कि देखो ये कहलाती है दान की भावना। कोई नाम नहीं, कोई माला नहीं, कोई सम्मान नहीं, दान तो परिग्रह का प्रायश्चित है। उसमें नाम पढ़ाई कि क्या आवश्यकता है, फिर भी दान देने पर यश की प्राप्ति होती है। ये उसका स्वभाव है कि जो देता है उसकी तारीफ होती है। लाओ लाओ करने वाले का सम्मान नहीं होता, दादा के चरण छुए जाते हैं लाला के लिए। तो आचार्य श्री के उपदेश के बाद वहां पर जो प्रमुख थे उन्होंने घोषणा की कि गांधी जी ने जो भी दान दिया है उस चांदी में हम भी अपनी तरफ से कुछ चांदी मिला करके देना चाहते हैं और अन्य भी जो देना चाहें वो उसमें चांदी मिला करके दे ताकि हम भगवान के ऊपर बहुत छत्र लगा सके। और फिर वैसा ही हुआ, इतनी बड़ी सभा में आचार्य श्री के सानिध्य में लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जितना देना था वो दिया और आज गोटे गांव में भगवान के ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं उस छत्र की नींव, उस छत्र में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो दादी की चांदी की चूड़ी का है। छत्र के विषय में शास्त्रों का ऐसा कहना है कि छत्र भगवान के कान और नासिका को अपने घेरे के अंदर कर ले उतनी आकृति के हो। आपको भाषा समझ में आ गई कि छत्र कितने बड़े हों, कि छत्र का जो घेरा है गोल आकार, उस गोल आकार के नीचे भगवान का जो मस्तक है तो भगवान की नासिका और कान उस गोले के अंदर उससे बाहर न जाते हो, उतनी आकृति के छत्र होना आवश्यक है। और छत्र सबसे नीचे सबसे बड़ा, बीच में मध्यम आकृति का और सबसे ऊपर सबसे छोटा, ऐसे 3 छत्र होते हैं। और वो 3 छत्र परस्पर में इस तरह से संबद्ध हो कि वो छत्र झूले नहीं। वर्तमान में जंजीर पर छत्र लटकाने की एक पद्धति चल रही है जो शास्त्र के रूप है। ये जानकारी दे रहे हैं हम आपको, यहां पर हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, सिर्फ एक जानकारी की बात कह रहे हैं आपसे। कि जंजीर पर छत्र को लटकाने की किसी शास्त्र में कोई विधि नहीं है। छत्र को लगाया जाता है डंडे पर, वो डंडा भी आप चाहो तो चांदी का रख लो, एक बढ़िया धातु का दंड हो और उसमें आप चाहो तो कितने भी अच्छे ढंग से उसको अलंकृत कर सकते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां कुछ रत्न वगैरह जड़ सकते हैं उस दंड में। और उस दंड पर लगे हुए जो छत्र हैं वो अगर ऐसे फिरते हैं गोल, तो छत्र फिरना तो पुण्य का परिणाम माना गया है और छत्र का झूलना शासन की अस्थिरता का प्रतीक है। जैसे जैन मंदिर में अगर छत्र ऐसे झूल रहे हैं तो फिर जैनों का जो वर्चस्व है उस नगर में या गांव में वो स्थिर नहीं रह सकता। और जितनी हिंदुस्तान की राजधानियां हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र में उप राजधानी नागपुर है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उन सब राजधानियों के जैन मंदिर में आप देखना कहीं न कहीं मूल लाए भगवान के ऊपर अचल छत्र लगे हुए हैं। मार्बल वगैरह के भी जो छत्र होते हैं वो झूलते नहीं है, वो अचल छत्र लगे होंगे आप देखना। पर यहाँ मार्बल के लगाने की हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लगाइए, सफेद रंग का छत्र होता है, चांदी की छत्र लगाइए, लेकिन बढ़िया ढंग से लगाइए। अब जैसे एक बुढ़िया के दान से वहां तीन छत्र लग गए, विजयनगर की समाज कोई असमर्थ समाज नहीं है। यहाँ पर यदि आपकी भावना जागृत हो जाए तो फिर जो मूल नायक आदिनाथ भगवान है और कोई ऐसे 10-20 साल पुराने नहीं है, ये भगवान काफी पुराने हैं और अतिशयकारी हैं। इस मंदिर में देवों का भी आवागमन होता है, ऐसे भव्य मंदिर में भगवान के ऊपर के छत्र को देखकर क्या आपकी आंखों को, आपके हृदय को तकलीफ नहीं होती? कैसा लगता है देखकर? कितना अजीब सा लगता है। आप सोचो कि यदि क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की टोपी पहनकर खेलने आ जाए तो टोपी उसको शोभा देगी? तो त्रिलोकी नाथ के ऊपर जो छत्र है वो यदि भगवान के कान और नासिका से छोटे हो और भगवान के ऊपर ऐसे झूलते हो, एक आध छत्र तो कपड़े के अंदर हो, ऊपर जो चंदों का है उसके अंदर हो, तो वो छत्र क्या मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे? तो इस पर आप विचार कीजिए। आज उत्तम ज्ञान का दिन और इसमें क्या देर करना, विलंब की आवश्यकता क्या है? फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जो आपको इस कार्य से रोक रही है? आप समर्थ हैं, ये कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो तो अच्छा। आदेश रूप में नहीं कह रहा, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, सुझाव एक जानने योग्य बात बतला रहे हैं। इसी प्रकार मंदिर में और भी जो उपकरण आदि हैं उनको आप अच्छे से अच्छा रखिए। जिस घड़े से पानी भरकर भगवान का अभिषेक करते हैं या और भी जो उपकरण है आपके, वो सारे उपकरण नीच धातु के हैं। आप समझ रहे हैं, लोहा जो है वो नीच धातु है, तो नीच धातु के उपकरण इस्तेमाल न करके आप श्रेष्ठ वस्तुएं रखिए। श्रेष्ठ नहीं तो कम से कम नीच न रखिए, कोई और रख लीजिए, ताम्र कलश है, रजत कलश है, स्वर्ण कलश है, कोई भी करण कलश लीजिए। अभी जैसे स्वर्ण कलश से अभिषेक और शांति धारा हुई, ये सुन करके बड़ा आनंद आया और देख करके और भी अधिक आनंद आया। कि एक मंडल अनंत मंडल उन्होंने कितनी उत्तम भावना की होगी कि जो भी राशि इकट्ठा हुई उससे उन्होंने और कोई विचार न बना करके भगवान के अभिषेक का वह सुंदर कलश प्राप्त किया और उस कलश से भगवान का अभिषेक किया इस बार। अब इस बार जो उनको आनंद आया होगा उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन। वो आनंद वो जानते हैं जिस प्रकार चौके में कोई चीज साधु को देते हैं, कोई लेकर के आता है जब वो अपनी चीज चलाता है और साधु लेते हैं तब उसको आनंद आता है। अब दूसरी चीजें भी उसको देने मिलती है पर उसका मन नहीं भरता। तो त्याग यहाँ पर उत्तम त्याग धर्म में दान रूप त्याग है। अब अभी 10 दिनों में किसी ने कुछ चीज त्यागी होगी वो यहाँ पर दान की श्रेणी में नहीं है क्योंकि त्याग दोनों दान में भी त्याग होता है पर और चीज तप वगैरह में भी त्याग होता है पर वो वाला त्याग इस त्याग से अलग है। तो दान किसे कहते हैं बेहतर बोल सकते हैं दादी माँ का अनुकरण करते हुए आपने ये घोषणा की है कि सबसे पहले जो यहाँ पर भव्य छत्र भगवान आदिनाथ स्वामी जी के ऊपर लगाए जाएंगे उसमें आपकी ओर से इन्होंने जो राशि घोषणा घोषित की है आपने सबने सुन ली उतनी राशि उन्होंने घोषित की है 15,000 से 10,000 रुपए हो गए। अब आप लोग देख लीजिए
हाँ महाराज जी एक सूचना करी थी आपने कुछ करना महाराज जी ज्यादा विराजमान थे तरह महाराज जी कई छूटे जोई से आप समाज में एक हफ्ता हमने प्रमुख सर ने कहे थे कि मैं किसी को आदेश नहीं करता मैं सिर्फ सुनते ही करता हूँ आपको इसको योग लगे तो उत्साहन करना ये तो आपकी बात है। महाराज जी आपने भक्त सूचन करी है कि भगवान ना ऊपर जो छत्र लगा हो तो छत्र एना माथा ऊपर नामो जे इन साइड हो साइड प्रमाण जइए कान में नाक एनी अंदर फेरावा आवी जाए एवं जोई એટલે મહારાજે સૂચન કર્યું છે એટલે એમાં રતિભાઈ સાહેબ છે એમને દાન કરેલી ઘોષણા કરી છે 15,000 રૂપિયા ત્યાર પછી 26 કમ્પ્યુટર 10,000 રૂપિયા બરાબર સુંદરજી સાહેબ 15,000 રૂપિયા નીચે મારી વાત સાંભળો આમાં અપાય નહીં એવું કેવું નથી કે બેનું એને આપણે જે કઈ લખાવી છે રકમ લખાવાય અને એમાં ઉમેરી અને આપણા શું પત્ર બનાવીશું
ये उपदेश पूरा हो जाए उसके बाद करें तो ठीक।
हाँ।
नाम की तख्ती लगवाने के लिए अगर वो दान कर रहा है तो उसने तख्ती लगाने के लिए सिर्फ पेमेंट दिया है ऐसा माना जाता है, वो फिर दान नहीं होता। तो इतना मर्म समझना आवश्यक है दान के विषय में कि गृहस्थ अपने जीवन में हर महीने हर साल जो परिग्रह इकट्ठा करता है तो उसमें कई कर्मों का बंध होता है, तो उन पाप कर्मों के बंध से छूटने के लिए वो प्रायश्चित के रूप में अपनी आमदनी का छठा हिस्सा धर्म कार्य में दान के रूप में लगा देता है, तो फिर वो दुर्गति का पात्र नहीं बनता और महान पुण्य का संचय कर देता है। तो अभी जो यहाँ पर घोषणा हुई कि जितनी भी दान राशि आ रही है उसमें किसी का नाम नहीं रहेगा, किंतु वो छत्र यहाँ के जैन समाज की ओर से लगा ऐसा अंत में प्रसिद्ध किया जाएगा। कितनी प्रसन्नता की बात है, देखो तालियों से ही समझ में आया, पर तालियां थोड़ी धीमी बजी इससे थोड़ी चिंता बड़ी बात। उसका कारण ऐसा हो सकता है कि आप लोग 8 दिनों से जो उपवास और व्रत कर रहे हैं तो हो सकता है कि हाथ पांव थोड़े धीमे
हो जाएगी,
और एक कहावत भी है कि नींबू को जितना निचोड़ो उतना उसमें से रस निकलता है, उसी प्रकार बनिए को जितना है नहीं बात।
अब महाराज
जो त्याग है दान रूप में किया जाने वाला त्याग वो महान पुण्य का कारण है, लेकिन कुछ ऐसे भी त्याग होते हैं जो पाप के कारण होते हैं। उसके विषय में हमसे किसी ने प्रार्थना की थी कि महाराज वो घटना आप जरूर सुनाना, एक सत्य घटना है माँ और बेटे के बीच की, वो घटना किसी ने प्रार्थना की थी। अभी आपके पास समय कितना है कि कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो भयंकर पाप के कारण होते हैं, तो अभी तो आपने पुण्य के कारण जो त्याग थे उनकी चर्चा सुनी थी, अब जो दूसरी बात है वो सुन लीजिए। एक कहानी, कहानी का अर्थ होता है एक आंख जिसकी नहीं होती उसको कहानी होती है। आखिर माँ तो माँ होती है, अभिमानी मन क्या जाने, वक्त गुजर जाने के पीछे क्या होगा जो पहचाने। आखिर माँ तो माँ होती है, विद्यालय में जब कानी माँ बेटे को ले जाती थी, सहपाठी जन उसे चिढ़ाते तब न उसे माँ भाती थी। एक दिवस वह बोला मम्मी मुझे छोड़ने मत आना, अब मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैंने रास्ता पहचाना, मैंने रास्ता पहचाना। अरे बच्चा जब जाता था स्कूल उसकी माँ ले जाती थी छोड़ने के लिए, तो उसके सहपाठी लोग चिढ़ाते थे तेरी माँ की तो एक आंख नहीं है, तो उसने माँ से जाकर के कहा कि अब तुम मुझे छोड़ने मत आना, मैंने रास्ता देख लिया है, मैं अकेला चला जाऊँ। पढ़ लिख कर जब बड़ा हुआ वह तब परदेश गया रहने, बीवी बच्चे हुए वहाँ पर अय्याशी के क्या कहने। एक बार लालायित होकर उनसे मिलने माँ आई, पर काली माँ की वह सूरत वहाँ किसी को ना भाई, वहाँ किसी को ना भाई। उस सिंगापुर चला गया लड़का पढ़ने के लिए, और पढ़ लिख करके जब उसका काम धंधा शुरू हो गया, उसने शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए। जब माँ को समाचार मिले तो वो आशीर्वाद देने के लिए वहां चली गई, पर वहां माँ की कानी सूरत किसी को पसंद नहीं आई। ठाट बाट के मद में आकर बेटे ने तब फटकारा, क्यों आई तू हमें सताने, वापस जाके दुत्कारा। अब माँ क्या बोलती है, आशीष देने आई थी बस, बेटा वापस जाती हूँ, सदा रहे तू खुश दुनिया में यही भावना भाती हूँ, यही भावना भाती हूँ। चलिए वापस। कोई दस्तावेज उठाने फिर जब वह भारत आया, देख द्वार पर ताला उसने हाल पता सब लगवाया, पता चला तब कुछ दिन पहले माँ अपना दम तोड़ गई, लेकिन तेरे नाम स्नेहवश यह अंतिम खत छोड़ गई, यह अंतिम खत छोड़ गई। वो वापस किसी काम से जब आया भारत, तो अपने घर पर ताला लगा हुआ देखकर पड़ोसियों से पूछता है कि ताला क्यों लगा है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ शांत हो गई है और तुम्हारे नाम पर ये आखिरी चिट्ठी छोड़ गई है। ये उसने चिट्ठी ली अपने हाथ में, अब माँ तो उसको पसंद थी नहीं, उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला, और चिट्ठी लिफाफे के अंदर से उसने लिफाफा फाड़ कर जब चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उसमें ये शब्द लिखे हुए थे, बेटे जब तू नन्ना सा था, बेटे जब तू नन्ना सा था, एक आंख तूने खोई, तीर लगाकर खून बहाकर तब मैं बेहद थी रोई, मेरी उम्र तुझे लग जाए तू काना ना बन जाए, अतः बनी मैं कानी प्यारे बिना किसी को बतलाए, बिना किसी को बतलाए, मेरी एक निशानी तुझ में नहीं किसी ने जानी है, माँ की आंख तुझे दिखलाती माँ की सुखद कहानी है, करना क्षमा खटकती थी मैं, भावन था दुख पहुँचाना, मरते मरते पत्र लिखाया खेद नहीं मन में लाना, खेद नहीं मन में लाना। चिट्ठी नीचे गिरी हाथ से होश ठिकाने पर आए, मिलना मुश्किल है ऐसी माँ पर क्या हो अब पछताए, मानव मानव ही होता है, गलती करके रोता है, लेकिन पाता नहीं उसे फिर जिसे सदा को खोता है, जिसे सदा को खोता है। आखिर माँ तो माँ होती है, अभिमानी मन क्या जाने, वक्त गुजर जाने के पीछे क्या होगा जो पहचाने। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ का त्याग, पिता का त्याग या कोई ऐसा त्याग उचित नहीं है जिससे बाद में पछताना पड़े। ओम शांति। जवानी के हाथे सुझे लो आलो, सुवाणी मस्त चलो सारे तुम हो, हे जिनवाणी आलो।